लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपसी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपसी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही।
ओम शांति, ओम शांति। नागपुर और उससे संबंधित सेवा केंद्रों की आप सभी भाई बहनों का, प्यारे साकार बाबा मम्मा की चरित्र भूमि, कर्म भूमि, वरदान भूमि, तपस्या भूमि पर बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य, हम सभी कोई ना कोई उद्देश्य लेकर के इस भट्टी में आए हैं। खासकर जब पांडव भवन में भट्टी करने का अवसर मिलता है तो मन में बहुत उमंग होता है। तो आज हमारे समक्ष आदरणीय शिलू बहन जी हैं, उनका हम एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं। परिचित तो सभी हैं ही, लेकिन फिर भी कुछ भाई बहने नए होंगे। आप वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं, राजयोग शिविरों के निर्देशिका हैं, एजुकेशन विंग के आप वाइस चेयरपर्सन हैं, पूरे विश्व के पांचों ही महाद्वीपों के लगभग 75 से भी अधिक देशों की आपने यात्रा की है और लाखों आत्माओं तक आध्यात्मिक संदेश आपने पहुंचाया है। आप बहुत कुशल अनुवादक भी हैं। बाबा की जब मुरली चलती है तो विदेशी भाई बहनों के लिए आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन साइड बाय साइड करते रहते हैं। आप मुंबई से ज्ञान में आए, आपने मुंबई यूनिवर्सिटी से बीएससी किया और उसके बाद 1969 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। प्रारंभ में कुछ स्थानों पर आपने सेवा की, वहां सेवा केंद्र खोलने के निमित्त भी बने। 1976 से आप मधुबन में ही रहकर राजयोग शिविरों का कुशलता पूर्वक संचालन कर रहे हैं। उन सब बातों से तो आप सभी अनभिज्ञ हैं, आप सभी जानते हैं कि शिलू बहन जी विशेष शिविरों का निर्देशन करते हैं और अब तक लाखों भाई बहने विभिन्न व्यवसायों के उससे अपना जीवन परिवर्तन कर चुके हैं और मार्गदर्शन ले चुके हैं। आप बहुत ही कुशल वक्ता हैं। सोनी टीवी, जी टीवी, आस्था टीवी, संस्कार टीवी पर जब पहले ब्रह्मा कुमारी के प्रवचन प्रारंभ हुए थे तब शिलू बहन जी के ही प्रवचन नियमित रूप से इन चैनलों पर आते रहे और वर्तमान में पीस ऑफ माइंड चैनल पर भी आप आदरणीय शिलू बहन जी को देखते हैं, उनकी मुरली भी आप लगभग सुनते हैं। आपके लिए मैं कहूंगी, वाणी में जिनके हैं सरस्वती का वास, बुद्धि में जिनके हैं गणपति का वास, हृदय में जिनके हैं परमात्मा का वास, ऐसे प्रभु रतन आप हैं खास। तो हम आप सभी भाई बहने संस्कार परिवर्तन मौन तपस्या भट्टी में आए हैं, तो जितना आप अंतर्मुखी रहेंगे, मौन में रहेंगे, उतना ही आप अच्छे से अच्छे अनुभव कर पाएंगे। तो विशेष ध्यान रखें कि भट्टी में ये चार दिन बहुत ही आवश्यक है, तभी आप बातचीत करें और वो भी इशारे से। तो अभी हम सुनेंगे आदरणीय शिलू बहन जी से भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य।
आप भी अपना परिचय दीजिए। आप डॉक्टर सविता बहन हैं, खास आपके लिए शांतिवन से यहाँ आए और फिर इसके बाद इनको वापस जाना है शांतिवन, क्योंकि कल आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो इसीलिए उसकी भी मुबारक देते हैं आपको। आप दादी जी के साथ रहते थे, उनकी फिजिशियन थे और डॉक्टर होने के नाते ग्लोबल हॉस्पिटल में भी आपने बहुत सेवाएं दी, लेकिन अभी बाबा की सेवा में ही फुल टाइम है। ओम शांति। प्यारे बेहद बाप दादा के घर में आपका, प्यारे बाप दादा की तरफ से, दादियों की तरफ से, सर्व मधुबन निवासी भाई बहनों की तरफ से और हमारी तरफ से भी आपका फिर से बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तीन स्थानों से मैंने सुना आए हैं, एक नागपुर, नागपुर वाले हाथ उठाए, अधिकतर तो नागपुर ही है, नीचे करें, और दूसरे जो बहादुरगढ़ के कनेक्शन से आए हैं, दिल्ली NCR दिल्ली के कनेक्शन में बहादुरगढ़, अच्छा। और दूसरा मैंने सुना मुंबई से भी आए हैं, थाना मुलुंड थाना से, हाँ थोड़े से आए हैं 5-6 जने, और भी कहीं से आए हैं, और भी कहाँ से जी? बिहार, बिहार से कौन आए हाथ उठाए? दो जने, अच्छा अच्छा ठीक। तो आप सभी का पांडव भवन में, जैसे बताया, बाप दादा की तपस्या भूमि, परिवर्तन भूमि, कर्म भूमि, वरदान भूमि में आप बट्टी करने आए हैं। और जैसे ही आप आए होंगे तो आपको सबसे पहले ये माला पहनाई गई है, साथ में थप्पा भी लगा दिया और उस पर क्या लिखा है, संस्कार परिवर्तन योग तपस्या, नहीं, संस्कार परिवर्तन योग तपस्या। तो संस्कार परिवर्तन योग तपस्या बट्टी में आप आए हैं। तो क्या है यहाँ आने का लक्ष्य? वैसे तो आप मधुबन में आते ही रहते होंगे, खास करके शांतिवन में बाप दादा से मिलन के लिए आते रहे तो पांडव भवन में भी चार धाम की यात्रा करने आते होंगे। लेकिन आप में से कई ऐसे भाई बहने होंगे जो मधुबन में पहली बार 4 दिन रहेंगे, वो हाथ उठाएं, अच्छा। और जो भाई बहने पहले भी आते रहे हैं और मधुबन में रहे हैं 2-4 दिन थोड़े दिन, वो हाथ उठाएं, अच्छा। आधा आधा है, ज्यादा है, पुरानी है। जो 10 साल के अंदर में, यानी 10 साल से अंदर में ज्ञान में चलते हैं, वो हाथ उठाएं, 10 साल से कम, अच्छा। और जो 10 साल से अधिक, अच्छा, वेरी गुड, सब पुराने रत्न है। जो 20 साल से ऊपर, अच्छा, वो भी है, वेरी गुड। तो फिर से आपका हार्दिक स्वागत करते हुए आपको इस बट्टी का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, वो बताएंगे। क्योंकि बाबा ने तो हमें बहुत ऊंचा उद्देश्य तो दे ही दिया है, इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या बनना है। सबसे पहले तो सबसे बड़ा उद्देश्य है हमें बाप समान बनना है। फिर दूसरा उद्देश्य है फरिश्ता बनना है। तीसरा उद्देश्य है देवता बनना है। तो बाप समान माना संपन्न और संपूर्ण, और फरिश्ता माना डबल लाइट, कोई भी बोझ न हो, और देवता माना सर्वदैवी गुणों से संपन्न। तो संपन्न और संपूर्ण भी बनना है, उसके लिए ब्रह्मा बाबा के कदमों पर कदम रखने हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने जो कदम उठाए संपूर्ण बनने के लिए, वो हमें भी उन कदमों पर चलना है। और इन सब के लिए है योग तपस्या, क्योंकि संस्कार परिवर्तन करने होंगे तब तो संपूर्ण बनेंगे, तब तो बाप समान बनेंगे, तब तो फरिश्ता बनेंगे, देवता बनेंगे। तो आप यहाँ आए हो क्या लक्ष्य लेकर? उद्देश्य तो बहुत ऊंचा है, वो तो पता है, लेकिन यहाँ जो 3 दिन आप रहेंगे, 4 दिन, उसमें क्या लक्ष्य रखेंगे? उसके लिए आपको यह बैज दिया गया, संस्कार परिवर्तन योग तपस्या करनी है। कई ऐसे पुराने संस्कार, द्वापर कलयुग के संस्कार, जो अभी तक मिटे नहीं हैं। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं, बच्चे कहते क्या करें, ये मेरे संस्कार हैं। फिर कहेंगे क्या करें, ये पुराने संस्कार हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, मेरे संस्कार वास्तव में कौन से हैं और अति पुराने संस्कार कौन से हैं, वो याद करो। द्वापर कलयुग के संस्कार अति पुराने संस्कार नहीं है। द्वापर कलयुग के संस्कार मेरे संस्कार नहीं है, ये तो माया के संस्कार है। क्योंकि माया के वश हम हो गए तो उन संस्कारों के भी वश हो गए, क्योंकि देह अभिमान में आए। तो देह अभिमान में आकर के जो भी कर्म किया वो संस्कार बनते बनते अब वो पुराने लगने लगे हैं। तो जैसे घर कर गए हैं, हमारी आदतों में ऐसे पड़ गए हैं, जो कईयों को जब कहते ना कि ये ठीक नहीं है, कहते क्या करें, ये मेरा संस्कार है। हाँ, एक भाई से हमने कहा, बहुत जोर जोर से बोल रहा था, तो मैंने कहा, भाई जी आप भट्टी में आए हो, थोड़ा धीर शांति से बात करें और मौन में रहना है, धीरज से, बिल्कुल हाँ इशारों से बात करें, इतना जोर से बात नहीं करनी है भट्टी में। बहुत धीरे से मैंने उसको कहा, लेकिन मैंने धीरे से कहा और उसने जोर से कहा, कहता बहन जी क्या करूं, मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसा ही आवाज दी है। हाँ, जोर से कहने लगा। तो दोष किसको रखा, किस पर रखा? हाँ, माँ बाप पर। माँ बाप ने ऐसा आवाज दिया, लेकिन माँ बाप ने, चलो कंठ उस प्रकार का होगा माँ बाप के अनुसार, लेकिन है तो अभी हमारे पास ना, हमारे हाथ में है, हम जोर से बोले या धीरे से बोले। चलो बाहर जाते होंगे तो जोर से बोलते होंगे, लेकिन यहाँ तो धीरे से बोले ना, यहाँ तो धीरे से भट्टी में आए हो, तो क्या है, भूल जाते हैं वो संस्कार, अनजाने में भी निकल आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो जो उस पुराने संस्कार या मेरे संस्कार कहते हैं, उन पर ध्यान देना, और ध्यान देकर उनको बदलने का लक्ष्य रखना, इसके लिए ये मौन भट्टी है, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन से ऐसे मेरे संस्कार हैं जिनके अभी तक मैं वश में हूँ। कईयों के जोर से बोलने की आवाज संस्कार होंगे, कईयों के क्या होता है, मम्मा हमेशा कहती थी, एक बहन चलती थी ना ठप 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 करके, पता नहीं कैसे चप्पल थे उनके, तो आवाज बहुत करती थी। तो मम्मा ने उनको कहा, देखो बहन, हाँ धरती को भी दुख होता है, ठप 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 करके चलते हैं, तो धरती को भी दुख नहीं देना है तो कैसे चलना है, कैसे चलना है, हाँ? फरिश्तों की चाल ऐसे चलो जैसे धरती को भी दुख न मिले, आवाज बिल्कुल न हो। और योग पट्टी में आए हैं तो आवाज तो वैसे ही मुख से भी नहीं करना है, तो चप्पल का आवाज करता है क्या? तो वो भी नहीं करना है। और दूसरा, यहाँ बारिश है तो उसमें भी बहुत धीरे से चलना है, क्योंकि स्लिपरी है, फिसलने वाली है, धरती हो जाती है, तो बहुत ध्यान से चलना है, और बिल्कुल जैसे फरिश्तों की चाल। फरिश्तों के लिए कहते हैं कि उनके पैर धरती पर ही नहीं होते, तो हम तो फरिश्ता बनने वाले हैं, तो हमारे भी ऐसे धीरे से हमारी चाल हो जो किसी को पता भी न चले। ये भी एक संस्कार परिवर्तन करना होगा। कई कहते क्या करें, मेरा चप्पल ही ऐसा आया, तो दोष किसको देंगे, या तो माँ बाप को दिया या तो चप्पल को दिया, तो ऐसी चप्पल पहनी क्यों, नहीं ले नहीं लानी चाहिए, क्योंकि देखना होता है जिस चप्पल में आवाज न हो, क्योंकि वो भी दुखदायी है, चप्पल की आवाज भी दुखदायी हो सकती है। तो इसीलिए कौन से ऐसे मेरे संस्कार हैं जो मुझे भी दुख दे रहे हैं, दूसरों को भी दुख पहुंचा रहे हैं, और हर एक यही चाहेगा कि मैं इनको बदलूं, पर बदलने के लिए एक तो संकल्प चाहिए, विचार चाहिए, फिर उसमें दृढ़ता चाहिए। कई ये भी कहते हैं कि बहन जी बदलना तो चाहता हूँ, बदलना तो चाहती हूँ, लेकिन क्या करे हो नहीं पाता है। तो मोटे मोटे संस्कार तो हम सब ने बहुत मिटा दिए ना, अज्ञान काल में कैसे कैसे संस्कार होंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत वैर दुश्मनी पता नहीं क्या क्या, हाँ हेरा फेरी बेईमानी चुगली क्या नहीं होगा। तो लेकिन जैसे बाबा के बच्चे बने, ये पता चला कि ये तो मायावी संस्कार हैं, तो तुरंत पहचान लिया और उनको जीतने का प्रयास शुरू किया, और काफी हद तक सफलता भी पाई, क्योंकि ये सब देह अभिमान के कारण पनपता है। लेकिन बाबा कहते उनके बाल बच्चे, चलो क्रोध नहीं होगा, परंतु अंदर में आवेश होगा, किसने कुछ कह दिया तो सेंसिटिव नेचर के। बाबा कई बार बताते हैं माया किस रूप में आती है, नाक भी पकड़ती है, कान भी पकड़ती है, चोटी भी पकड़ती है, हाँ, और थप्पड़ भी मारती है, घूसा भी मारती है, गिराती भी है, बेहोश भी करती है, और फिर आखिर मार भी डालती है। कितनी बार बाबा की मुरली में आता है बाबा माया क्या क्या करती है। तो जब नाक से पकड़ती है तो कैसे पता चला माया ने नाक से पकड़ा है, जब कंफ्यूजन हो जाता है, ज्ञान पहला इतना निश्चय था, अचानक ज्ञान में संशय पैदा होने लगता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, तो ऐसे कैसे हो सकता है, और उसके कारण इतने मुंह जाते हैं जो ज्ञान का मनन चिंतन की बजाय, ज्ञान का रमण करने की बजाय जंगल में चले जाते हैं। जंगल में चले जाना माना कांटे लगना, माना दुख होना, माना कि नेगेटिव थिंकिंग करना, माना कि ऐसा सोच सोच करके अपने आप को ही परेशान कर देना। तो बाबा कहते हैं कि ये नाक से पकड़ा माया ने, जैसे किसी को नाक से पकड़ कोई पकड़ता है ना, तो सांस लेना उनके लिए भारी हो जाता है, जैसे सफोकेशन ना, तो यही मानो अंदर में हलचल बेचैनी, समझो माया ने नाक से पकड़ा है। फिर माया कान से कैसे पकड़ती है, कई बार कान से पकड़ना माना पर चिंतन, पर दर्शन, पर ग्लानी, पर यानी क्योंकि कान से सुनते हैं ना, तो किसी ने किसके लिए कुछ कह दिया, बस उसका चिंतन चलने लगा, हमारे लिए कुछ कह दिया, उसका चिंतन चलने लगा। तो पर चिंतन करना ये वाना माया ने कान से पकड़ लिया है। फिर चोटी से कैसे पकड़ती है माया? हाँ, चोटी होती है ना, चोटी से किसी को खींचो, बालों से किसको खींचो, तो सिर पीछे चला जाता है। तो सिर पीछे चलना माना, सिर पीछे चलना माना ज्ञान में आने से पहले जो मेरा जीवन था। कई बार लगता है कि अभी तो बाबा का बना हूं, पता नहीं, बंधन लगता है, ये नहीं खाओ, ये नहीं पहनो, ये नहीं पियो, या नहीं जाओ, ये नहीं देखो, वो नहीं करो, वो नई नई जो है ना वो ही याद आता है। तो समझ से पहले तो हम स्वतंत्र थे, हमको जो चाहिए करते थे, और अभी कहते हैं नहीं, ये नियम है, ये मर्यादाएं हैं, ये बाबा की श्रीमत है, इस पर चल, इस पर ये बातें नहीं करनी है, क्योंकि बाबा ने हमें मर्यादाएं तो बहुत दी है, सुबह से लेकर के रात्रि तक की मर्यादाएं हैं। उठो तो कैसे उठो, सोचो तो क्या सोचो, खाओ तो क्या खाओ, तो क्या खाओ ये मर्यादा दी हमें। अन्न दोष संग दोष से बचना है तो क्या नहीं करना वो तो समझ ही गए, क्योंकि क्या करना है वो पता चला, क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या करना है, हर बात के लिए बाबा ने हमें श्रीमत दी है। कभी बाबा राय देते हैं, कभी अपना विचार देते हैं, कभी आज्ञा करते हैं, तो बाबा की आज्ञा माने माथे ये जब हम संकल्प करते हैं तो उसमें हमारा ही कल्याण है। लेकिन कई बीती बातों को सोचते हैं, पहले तो मैं जो चाहिए करता था, कोई बंधन नहीं था, अभी बहुत सारे बंधन आ गए हैं, ये क्या करूं, कैसे करूं, तो उसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं और पिछला जीवन याद करते हैं। और बाबा क्या कहते हैं, बच्चे आप तो उस पुरानी दुनिया से मर गए, पुराने जीवन से मर गए, वो जन्म से ही मर गए, और पिछला जन्म आपको याद है क्या? तो ये भी तो ब्राह्मण बनने से पहले तो पिछला जन्म ही था ना, भले शरीर वही है, लेकिन यही कहेंगे ना, नया जन्म लिया, ब्राह्मण जन्म माना नया जन्म, तो नया जन्म माना जो पहले थे ब्राह्मण बनने से पहले वो तो भूल ही जाना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए कि पहले ऐसा था, क्योंकि वो तो मायावी संस्कार थे, पता ही नहीं था कि हम माया के मुरीद है। बाबा ने उस दिन भी कहा माया के मुरीद बन गए हैं। तो जिसका कोई मुरीद होता है तो उसको वो जैसे कहते वैसे ही करता रहेगा। अभी हम बाबा के मुरीद बने हैं, तो बाबा के मुरीद माना बाबा जो कहे वो हमें करना है। तो इसलिए पीछे मुड़के भी नहीं देखना कि पहला जीवन मेरा कैसा था। कई फिर थोड़ा सा परिवर्तन होता है तो बड़ा नशा चढ़ जाता है। हाँ, बाबा कई बार बताते अपना अनुभव दूसरों को बताओ, अनुभव, ये पिछले संडे की भी मुरली थी, अनुभव से किसी को हम प्रेरणा दे सकते हैं कि कैसे मेरे जीवन में परिवर्तन आया, वो और बात है, लेकिन वो बातें सोच करके, वो याद करके फिर उसमें ही लग जाना, ये तो बाबा कहते वो तो जीवन खत्म हो गया, मर गए हम उस जीवन से। तो बाबा हमें सब कुछ नया दे रहे हैं। कल भी बाबा की मुरली थी क्या परसों, नया दिन लागे नई रात लागे, नया नया लागे सरगम जीवन, सारा सब नया है, नई दुनिया के लिए है, नए युग के लिए हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, इस कलयुग को तो विदाई देना है। तो इसीलिए भले मोटे मोटे संस्कार नहीं भी होंगे माया के, लेकिन उनके बाल बच्चे अंश जो संस्कार रूप में अभी तक हैं वो जागृत हो सकते हैं। तो ये 3-4 दिन उस पर भी आप सोचें कि ये संस्कार भी मुझे एकदम से खत्म करने हैं, ये भी संस्कार मेरे अंदर नहीं आए, और वो पुराना जीवन पुरानी दुनिया तो खत्म, पर जो बाकी भी है वो भी नहीं आए, और मैं आत्मा यहां से एकदम स्वच्छ साफ शुद्ध होकर के जाऊं। फिर माया किस रूप में आती है? फिर माया थप्पड़ मारती है। तो थप्पड़ मारती है माना जैसे किसी को थप्पड़ मारते हैं तो साइड में मुंह हो जाता है ना, तो वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, दूसरों को ही देखना। एक है उनका चिंतन करना, पर चिंतन से पहले देखना होता है। तो अगर चिंतन ही नहीं करना है तो देखना भी क्यों। और कई बार तो उसमें हम उसका कैसे नेगेटिव लेते हैं, वो तो अमृत वेले उठता नहीं है, मैं क्यों उठूं, वो तो ये करता है, मैं भी ये करूं। तो क्या है कि दूसरों को देखना, बाबा कहते अगर देखना है किसी से कोई चटाबेटी कंपटीशन भी करनी है तो अपने पास्ट से करो, कल से आज मैं ज्यादा बेहतर बना हूं। अगर कल जो मेरी स्थिति थी आज मेरी स्थिति उनसे अच्छी होनी चाहिए, उससे भेंट करो, न कि दूसरों से भेंट करो। दूसरों से भेंट करने से हमारी स्थिति कोई ऊंची नहीं बनेगी। अगर भेंट करनी है तो बाबा से भेंट करो, बाबा से भेंट करो, बाबा जैसा मुझे बनना है, आत्माओं जैसा थोड़ी बनना है, बाप समान बनना है। हाँ, दूसरों को आप समान बनाना है, लेकिन बाबा कहते कई बार आप समान नहीं, बाप समान कहो, बाबा जैसा बनना है मुझे भी बनना है। तो इसीलिए किसी दूसरे को नहीं देखो, बस अपने अंदर में रमण करो, अपने आप को देखो। और फिर माया घुसा मारती है, जैसे किसी को लगता है ना तो दर्द होता है, तो किसी ने कुछ कह दिया, इतने सेंसिटिव नेचर के हो जाते, किसने कुछ कह दिया अंदर में जैसे दर्द होने लगा, दुख होने लगा, बहुत सेंसिटिव। तो बाबा कहते फीलिंग की फ्लू, फ्लू लग किसको होता है ना, बुखार होता है, तो वो फिर फैलता है, दूसरा उसके साथ होगा उसको भी फ्लू हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं ये भी माया का फ्लू है। तो किसी ने कुछ कहा, बस थोड़ा अंदर में दुख हुआ, तो कोई भी बात में दुख नहीं करना है। बाबा तो कहते हैं सुख दो सुख लो, परंतु दुख चलो देते नहीं है पर लेते हैं, वो भी नहीं लेना है। चलो उसने कहा तो क्या हुआ, लगा थोड़ी, ये तो मेरी अपनी जो बात है जो है, उसने उसके कहने से थोड़ी कोई बात हो जाएगी। तो इसीलिए किसी का दुख लेना भी नहीं है। तो अगर कोई इतनी कोई जरा भी सेंसिटिव नेचर ना हो, और रोने की तो बिल्कुल आदत ही ना हो, बाबा कहते जिन रोया तिन खोया, हाँ माता ही जिन्होंने इस महीने में थोड़ा थोड़ा रोया है हाथ उठाओ, कोई नहीं होया हो, देखो दो चार सच बताते हैं। उस दिन बाबा ने पूछा था तो विदेशियों ने सच बताया, अच्छी बात है, हाँ चार पांच ने हाथ उठाया। तो रोना माना खोना, हाँ जिन रोया तिन खोया, जिन सोया तिन खोया तो है ही है, पर जिन रोया तिन खोया, ये आंसू भी ये मोती बन जाए, भले प्रेम के आंसू हो पर दुख के आंसू तो ना हो ना। हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है, कर्मों का खाता है, सब यहाँ चुकतू करना है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि इतनी तुम्हें कमाई करनी है जो 21 जन्मों के लिए भविष्य की कमाई जमा करनी है, और दूसरा 63 जन्मों का जो कर्जा है, जो पाप का खाता है, उसको चुकतू करना है। मानो इतना कमाना है जो 63 जन्मों का जो कर्जा है ना, उसको भी खत्म करना है, और 21 जन्मों के लिए कमाई करनी, टोटल 84 जन्मों का हिसाब है। तो कितना कमाना होगा, कितना कमाना होगा। तो उसके लिए एक घड़ी भी गफलत नहीं हो, एक घड़ी भी नहीं, एक घड़ी आधी की भी पुनः आध कहते हैं, तो एक घड़ी आधी की पुनः आध गफलत न हो, क्योंकि गफलत किया तो घाटा बहुत हो जाएगा। बड़े बिजनेसमैन है हम, आज बाबा ने कहा कमाई कमाई है, कदम कदम पर कमाई कमाई है। तो कमाई जब कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, तो उनकी कमाई भी करोड़ों में होती है, और घाटा होता है तो भी करोड़ों में होता है। ऐसे नहीं कि 100, 200 या 500, छोटे मोटे व्यापारी होंगे तो इतना ही घाटा और इतना ही मुनाफा होगा, लेकिन बड़े जो होते हैं बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट, उनका तो घाटा और मुनाफा वो तो करोड़ों में भी होता है। तो इसीलिए हम तो उनसे भी बड़े बिजनेसमैन हैं, बाबा कहते वो तो सब खाक में मिल जाने वाला है, कितने भी करोड़ों हो उनके पास, लेकिन ये सब खाक में मिलने वाला है और हम बच्चे कमाई करके साथ ले जाएंगे, हमारे हाथ भरतू जाएंगे और उनके हाथ कैसे जाएंगे, खाली जाएंगे। तो अगर हमारे हाथ भरतू करके जाने हैं, 21 जन्मों की कमाई करनी है, 63 का जन्मों का घाटा खत्म करना है, तो कितनी कमाई करनी पड़ेगी। किसके सिर पर बहुत कर्जा हो तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है उस कर्जे को खत्म करने लिए। तो इसलिए बाबा कहते चलो पिछले और 62 जन्मों का तो पता नहीं होगा, लेकिन इस जन्म का तो पता है ना, क्या क्या हमने भूले किए। तो पिछला याद नहीं करो, पर जो भूले किए वो बाबा को लिख करके दो। तो लिख करके देंगे, बाबा कई बार कहते आधा माफ कर देंगे। तो बाबा के कमरे में जाते हो, बाबा की झोपड़ी में जाते हो, हिस्ट्री हॉल में जाते हो, शांति स्तंभ पर जाते हो, वहां बैठ के आपको सवेरे कहा जाएगा पत्र लिखना है। तो पत्र लिखने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, तो उस समय अपनी जो भी कमी कमजोरी उसको खत्म करने के लिए बाबा को लिख के डाल दो। कोई नहीं पढ़ने वाला है, बाबा जाने आप जाने। तो इसीलिए आप यहाँ चार धाम की यात्रा भी करेंगे, तो चार धाम की यात्रा करते समय बाबा को एक एक संबंध से याद करना है। बाबा के कमरे में जाएंगे तो कैसे बाबा से बातें करो, जैसे बच्चा अपने पिता से बातें करता है, तो हम आत्मा भी बाबा से सच्चा बच्चा बनकर के बातें करें, अधिकार से बातें करें। अब हम जानते हैं जो बाबा का है वो मेरा है, बाबा हमको वर्षा देने के लिए आए हैं, तो इतनी बाबा हमें कमाई करा रहे हैं, तो वो नशे से बाबा को याद करो, कितने ऊंचे बाप के हम बच्चे हैं। जिसको सारी दुनिया याद करती वो बाप हम बच्चों को याद करता है, मानो वो अंदर में नशा लाओ जब बाबा के कमरे में बैठते हो बाबा को याद करने। तो पिता रूप में याद करो, फिर टीचर रूप में बाबा को हिस्ट्री हॉल में याद करो, और टीचर रूप में याद करना माना उसी संदली से, हिस्ट्री हॉल की जो संदली है उसी पर बैठ करके बाप दादा ने मुरली चलाई है, जो मुरलियां हम सुनते हैं पढ़ते हैं वो उसी संदली पर बैठ करके बाबा ने चलाई है मुरली। तो मानो हिस्ट्री हॉल में बैठ करके वो दृश्य निकालो, कैसे बाबा यहाँ बैठ करके मुरली चलाते थे, और उस समय बाबा की जो गजगोर होती थी ना वो बाबा की देखने जैसी होती थी। तो बाबा को कहते थे, क्योंकि कोई 15-20 भी बैठे होते होंगे, इतने तो होते भी नहीं थे जो हिस्ट्री हॉल भी पूरा भरे, तो थोड़े से ही होते थे, लेकिन बाबा की जो मुरली चलती थी वो तो बहुत पावरफुल चलती थी। तो कई बाबा को कहते थे बाबा इसमें बैठे तो 25-30 भी होंगे, लेकिन आपने तो ऐसे सुना है जैसे पता नहीं कितने हजारों बैठे हैं। तो बाबा कहते थे बच्चे मैं केवल इनको थोड़ी सुना रहा था, जो भविष्य में बच्चे आने वाले हैं बाबा तो उनको भी देख रहे हैं। तो देखो हम तो आपको ही देख रहे हैं ना, लेकिन बाबा की दुरान देशी जो बुद्धि थी वो भविष्य में आने वाले बच्चों को भी देख करके बाबा मुरली चलाते। अभी तो हम लोगों की भी ऐसे ही बुद्धि हो गई है, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं ना रिकॉर्ड हो जाता है, और रिकॉर्ड होता है पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाता है। तो बहुत ध्यान से बोलना होता है, बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि कहाँ भी पहुंच जाएगा। तो हमको किसी ने कहा कि आपके आगे माइक्रोफोन रखा, माना ये कभी नहीं सोचो कि केवल इन लोगों को ही तक ही पहुंच रहा है। डीआर वो लोहार में तो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाता है, टीवी पर भी आ जाता है। तो हम तो अभी यही सोचते हैं कि जब भी हम बोलते हैं ना हम खाली इनको नहीं बोलते हैं, लेकिन सारे विश्व की आत्माएं। दादी जानकी भी ऐसे अनुभव करती है, कई बार सुनाती है। तो देखो जी, हाँ इसीलिए हम अभी यही अनुभव करते हैं। तो बाबा तो साकार में जब, जिस समय कोई इस प्रकार का कोई साधन भी नहीं थे, न इंटरनेट था, न कोई ईमेल थे, न व्हाट्सएप थे, न ये माइक्रोफोन थे। बाबा तो माइक पर भी नहीं बोलते थे, बाबा को तो माइक पसंद ही नहीं था। बाबा कहते थे माइक पर पढ़ाई होती है क्या? माइक पर कैसे पढ़ाई होगी? तो पढ़ाई के लिए तो क्लासरूम में माइक पर बोलेंगे क्या? अब दूसरा सुनाना चाहे तो कैसे सुनाएगा, और इतने होते भी नहीं है। पर अभी तो हजारों में लाखों में है, तो माइक तो रखना पड़ता है। लेकिन माइक रखना माना, माइक पर सुनाना माना, ये यहाँ तक सीमित नहीं है, कहाँ कहाँ चला जाएगा। तो इस हिसाब से वो सारी दुनिया को देख करके भी बोलना है, क्योंकि सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और वो भी अनुभव कर रहे हैं। तो देखो अभी हम लोग ये सोचने लगे, पहले कहाँ सोचते थे, लेकिन बाबा ने तो देखो उस समय बाबा की ये सोच थी। तो इसलिए हिस्ट्री हॉल में जब आप बैठे तो यही अनुभव करें, बाबा ने यहाँ बैठ करके ये मुरली चलाई थी जो सारे विश्व में जाती है। बाबा मुरली में आप पढ़ते होंगे बच्चे, ये मुरली विलायत जाएगी। तो देखो बाबा विदेश के बच्चों को भी कितना याद करते थे, और यही बाबा भी कहते थे साकार है बच्चे, ये जब विदेश के बच्चे समझेंगे ना, और वो भारत में आकर के भारत के कुंभकर्णों को जगाएंगे, तो भी वो भी देख रहे हैं। भारत वाले भारत वालों को सुनना नहीं पसंद करेंगे, पर विदेश वाले सुनाएंगे ना तो कहेंगे अच्छा आपने इतना अच्छा ज्ञान लिया, अब इतनी आपका जीवन में परिवर्तन आया है, तो विदेश वालों से प्रभावित होंगे। और हम विदेश में जाते हैं ना, वहां पर विदेशी विदेशी को समझाए, मतलब विदेशी भारतीय को समझाएगा ना, वो भारतीय प्रभावित नहीं होते। वो कहते ये विदेशी हमको क्या ज्ञान देंगे, हम ज्यादा जानते हैं। इसलिए विदेशियों से वो ज्ञान नहीं सुनना चाहते। भारतीय कोई जाएगा भारत से तो जरूर उनका सुनेंगे, पर विदेशी भारतीय को वहां सुनाए वो उनको इतना लगेगा कि हम ज्यादा जानते हैं। तो ये है। लेकिन वो विदेशी जब भारत में आते हैं और यहाँ उनको देखते हैं कि उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया, तो अवश्य उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो यानी कहने का भाव है कि ये भगवान ने ये ज्ञान हम आत्माओं को दिया है सबके लिए, सारी दुनिया के लिए, पर वो हिस्ट्री हॉल में बैठ करके ये दिया है। मुरली सबके लिए है। कई भाई बहने कहते हैं वो हिस्ट्री हॉल में जो सनली है ना उसको चेंज करो, यहाँ चेंज किया, यहाँ भी पहले सनली थी, यहाँ वो बड़ा तखत था, अब एक बाप दादा यहीं आते थे, ओम शांति भवन में भी वही था, शांति वन में भी वही था, सब हटा दिए, क्योंकि लोगों को आजकल पीठ दर्द ज्यादा होने लगा है, तो इसीलिए बैक के लिए सहारा चाहिए, तो सब कुछ बदल दिया। पर हिस्ट्री हॉल की जो संधि है वो नहीं बदली जी। बाबा बैठते थे जो पांडव भवन माना हिस्ट्री हॉल का जो ये अगर देखेंगे इस तरफ ये वाला दरवाजा, और मम्मा उस तरफ में, मम्मा उस तरफ से बैठती थी, और बीच में भी एक संधि हुआ करती थी जहाँ एक बहन को योग कराती थी। तो बाप तो पहले मम्मा आती थी, मम्मा मुरली चलाती थी, फिर बाबा आते थे। और विशेषता ये थी जब बाबा आते थे ना, मम्मा एक सेकंड में मुरली बंद कर देती थी, बिल्कुल एक शब्द आगे नहीं बोलती थी। बाबा कहते बच्ची हाँ मम्मा, मम्मा के बच्ची नहीं मम्मा, बाकी सब तो बच्ची पर मम्मा को मम्मा कहते थे, मम्मा पूरा करो, तो मम्मा चुप एक शब्द नहीं बोलती थी। तो कई बार अभी कैसे बाबा सुने मम्मा क्या बोल रही है, तो बाबा क्या करते थे वो बाहर खड़े हो कैसे कान लगा के सुनते थे। हाँ मम्मा क्या सुना रही, मम्मा देखे नहीं, तो इस प्रकार ये तो हंसी की बात, लेकिन कहने का भाव है। और फिर मम्मा उठना चाहती थी कि वो भी आगे जाकर के बैठे, लेकिन बाबा मम्मा को उठने नहीं देते थे, बच्ची यही मम्मा यही बैठो, तो मम्मा क्या करती थी ऐसे करके देखती थी बाबा को पूरा टाइम, ऐसे करके बाबा को देखती थी क्योंकि बाबा उठने नहीं देते थे। तो वो दोनों संधियां थी। तो कईयों ने कहा ये संधि बदली करके ऐसा रखो ताकि पीठ मिले, लेकिन दादी जी ने कहा नहीं ऐसे ही रहेगा। अभी शांति स्तंभ के जो मार्बल है वो भी काफी खराब हो गए हैं, इतना पुराना लगभग 49 ईयर्स हो गए, तो इनको चेंज करो। तारी जानने का नहीं, वो ही है जो पुराना है वो हेरिटेज है ना, उसको तो हम बदल नहीं सकते हैं, ऐसा ही रहेगा। तो देखो हिस्ट्री हॉल ऐसा स्थान है जहां से विश्व को बाबा का संदेश मिला है, तो वहां बैठ करके ज्ञान का मनन चिंतन करो। आप भी ऐसे अनुभव करो कि सारे विश्व को मैं सकाश दे रहा हूं हिस्ट्री हॉल से। और फिर आप जाएंगे शांति स्तंभ पर, तो शांति स्तंभ पर क्या अनुभव करें, जैसे बाबा सतगुरु के रूप में मेरे सामने हैं और सतगुरु से हमें वरदान प्राप्त हो रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने कैसे अपनी हड्डियां गलाई, ये भी कहेंगे सेवा में, अंत तक बाबा ने सेवा की, तो सतगुरु का वरदान पाने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, सेवा करनी होगी, गलानी होगी। तो हिस्ट्री हॉल में ज्ञान का मनन चिंतन और शांति स्तंभ पर वो शांति के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाने हैं। जो बाबा के अव्यक्त होने से 6 महीने पहले बाबा की सारी जो मुरली चलती थी ना, बाबा इसी प्रकार चली, बच्चे तुम्हें शांति स्तंभ बनना है, लाइट हाउस बनना है, और टावर ऑफ पीस बनना है, टावर ऑफ लव बनना है, टावर टावर बाबा कहते थे, तो स्तंभ बनना है और सारे विश्व में शांति प्रेम शक्ति ये फैलानी है, ये बाबा कहते थे। तो देखो इसीलिए नाम ही रखा है शांति स्तंभ। नीचे शांति वन में दादी जी के नाम से प्रकाश स्तंभ, लेकिन ब्रह्मा बाबा की स्मृति में शांति स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, पवित्रता स्तंभ, शक्ति स्तंभ, क्योंकि ये साकार मुरलियों में से ये शब्द लिए गए हैं चारों तरफ जो लिखा गया है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने इन चारों अनुभूतियों के आधार से स्तंभ बने, ऐसा मुझे भी स्तंभ बन करके एक लाइट हाउस या पीस हाउस या ऐसे बन करके चारों ओर देना है, ये आप अनुभव करें शांति स्तंभ पर। और सतगुरु से उसके लिए वरदान ले रहे हैं हम, अपनी हड्डियां सेवा में लगा रहे, ऐसे ऐसे सुंदर अनुभव आप शांति स्तंभ पर बैठ करके कर सकते हैं। और फिर झोपड़ी में आए तो झोपड़ी में क्या अनुभव करेंगे, बाबा को सखा रूप में देखें, क्योंकि वहां 1-to-1 बैठते थे, इंडिविजुअल बैठते थे, किसको कुछ अपनी पर्सनल बात होती थी बाबा को देते थे, क्योंकि बाबा कहते थे कोई भी ऐसी बात है बाबा को सुनाओ। तो अभी सबके सामने कैसे सुनाएंगे, तो बाबा के साथ झोपड़ी में बाबा मिलते थे उनको, तो झोपड़ी में 11 बजे बाबा बैठते थे। और ये जो बाबा की झोपड़ी है ये ऐसे नहीं होती थी, बाबा के दिनों में तो हर साल ताजे खजूर के पेड़ के पत्ते होते ना, उनसे बाबा बनवाते थे, ताजे ताजे हरे हरे पत्तों से बनवाते थे, और इतनी अंदर ठंडक होगी, बाहर गर्मी होगी लेकिन अंदर ठंडक होती थी। तो बाबा दिन के समय वहां बैठते थे, पत्र लिखते थे, किनसे मिलते थे और चर्चा करते थे, लेकिन ज्यादा तो नहीं बैठ सकते थे, परंतु हिस्ट्री बाबा के कमरे में थोड़े ज्यादा बैठते थे। तो कम आप बाबा की झोपड़ी में जाएं तो यही अनुभव करना, बाबा को अपने दिल की बातें सुनाओ और बाबा आपकी दिल की बातें सुन करके दिल का जवाब देंगे। तो सखा रूप में, फ्रेंड रूप में बाबा को देखो, हल्के बनो, बाप टीचर सतगुरु के आगे तो थोड़ा रिजर्व रहेंगे ना, ऑफिशियल लगता है, लेकिन फ्रेंड के आगे बिल्कुल अनऑफिशियल। तो ऐसा आप अनुभव करना। तो संस्कार परिवर्तन करना है, कोई भी पुराना संस्कार मेरा रह न जाए, ये 3-4 दिन उसके लिए भट्ठी में पकना है, अग्नि योग अग्नि पकानी है, योग अग्नि पकाना माना उसमें जो चीज पड़े वो बदल जाए। वैसे भी अग्नि में अगर कोई भी चीज डालते हैं तो क्या होता है, उसी रूप से वापस नहीं आती है, अगर निकलेगी भी अग्नि से लेकिन रूप बदला हुआ होगा। कोई भी चीज, कई बार टमाटर बैंगन आलू डालते हैं ना आग में, डालते हैं सेकते हैं तो क्या होता है, बैंगन डालो तो बर्था बन जाएगा, कुछ भी डालो तो उसका रूप रंग भी बदल जाएगा और उसका गुण भी बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। बड़ा कठोर होता है वो नरम हो जाएगा। तो इस भट्ठी में कोई भी ऐसे कठोर संस्कार हैं जो बदलते नहीं हैं, वो अग्नि में तपने से बदल जाएंगे। और कैसे तपेंगे? एकदम अशरीरी अवस्था बनाओ। एक है देही अभिमानी अवस्था, कर्म करते हुए देही अभिमानी स्थिति, आत्मा रूप में भाई भाई देखना, भाई भाई से मिलना, भाई भाई से व्यवहार करना, आत्मा देखना, यह है देही अभिमानी स्थिति। लेकिन देही अभिमानी स्थिति से ऊंची स्थिति है विदेही स्थिति। विदेही स्थिति माना सब कुछ होते हुए भी मन उनमें फंसा हुआ नहीं है, इसको कहेंगे विदेही स्थिति। जैसे राजा जनक की मिसाल देते ना, राजा जनक महल में रहता था लेकिन उसको महल का मोह नहीं था। तो सब कुछ करना लेकिन नष्टो मोहा होकर के करना, नष्टो मोहा न्यारा प्यारा होकर के करना, यह है विदेही स्थिति। और फिर बाबा कहते अशरीरी अवस्था। तो अशरीरी और देही अभिमानी में क्या अंतर है, कई पूछते हैं। तो अशरीरी माना जैसे हम बैठे बाबा की याद में ये देह एकदम भूल जाए, ये देह भूल जाए, ऐसे भूल जाए, बस एक बिंदु बन जाना, मैं बिंदु हूं, मैं बीज रूप हूं, सारी शक्तियां मुझ में समाई हुई है, मैं बाप समान हूं। जैसे बाबा अशरीरी है, मैं आत्मा भी एकदम अशरीरी हूं, ये योग की अवस्था है। और देही अभिमानी चलते फिरते, ये कर्म के अंतर्गत देही अभिमानी बनते। विदेही स्थिति ये अंतर मन की स्थिति है, कैसे न्यारा प्यारा रहना। और अशरीरी योग में रहें और एकदम देह का भान ऐसे भूल जाए जैसे ये देह है ही नहीं, मैं तो बस एक आत्मा हूँ, एक बिंदु हूँ और उस बिंदु बाप के साथ हूँ, मैं भी बिंदु, बाबा भी बिंदु और बाकी सब बातें ड्रामा बिंदु कह करके सोच करके फुल स्टॉप लगाना और कुछ भी याद न आए, ये अशरीरी अवस्था है। और ऐसी अवस्था है ही योग तपस्या है, यही अवस्था ज्वालामुखी योग का रूप है। और उसी स्थिति का अनुभव हमें करना है, वहां तक पहुंचना है, तभी हमारे जो कठोर संस्कार है ना वो नरम होंगे, फ्लेक्सिबल बन जाएंगे। और जिसको बाबा कहते हैं शुद्धिकरण, जैसे सोने को अग्नि में डालते हैं तो उसका शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण माना जो अंदर में खाद है वो निकल जाती है। सोने में कई चीजें पड़ती है ना, चांदी, तांबा, लोहा, जो भी है, तो वो सब उनका जो टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो सोने से कम होता है, तो धीरे धीरे वो मेल्ट हो जाएगा, वो पिघल जाएगा। लेकिन सोना का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो इसीलिए सोना शुद्ध होकर के निकलेगा। तो इसीलिए बाकी जो भी संस्कार है वो सब इस योग अग्नि में पिघलते जाए और आत्मा शुद्ध सोना बन जाए। और जितना ही शुद्ध सोना होगा उतना ही वो मोल्ड होगा। जो सच्चा सोना वो मुड़ सकता है, जो जिसमें बहुत ये एलॉय होगा, खाद होगी, वो मुड़ नहीं सकता है। इसीलिए बाबा देखो पुरानों को दूसरा वरदान देते हैं और नयों को दूसरा वरदान देते हैं। नयों को वरदान क्या मिलता है? कई नहीं कहते ना, हम इतना लेट आए, अगर पहले आते तो बहुत कुछ आगे बढ़ते। तो बाबा कहते कोई बात नहीं, लेट आए पर टू लेट नहीं आए, तो लेट आए लेकिन बाबा क्या वरदान देते उनको? लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। आप फर्स्ट जा सकते हो, फास्ट जा सकते हो। ये म्यूजिकल चेयर्स का खेल चल रहा है ना, ये गेम चल रहा है। लंबी मैराथन होती है ना, तो पहले लगता है ये आगे गया लेकिन वो पीछे रह जाएगा और पीछे वाले आगे चले जाते हैं। इसीलिए म्यूजिकल चेयर्स में भी सब कुर्सियां घूम रहे हैं कुर्सियों के इर्द गिर्द। अभी तक म्यूजिक बजा बंद नहीं हुआ, और जैसे म्यूजिक बंद होगा जो कुर्सी उनके नजदीक होगी वही मिलेगी। तो इसलिए अभी किसी भी कोई भी सीट ऑक्यूपाइड नहीं है, कोई भी नहीं बैठा है सिवाय बाबा मम्मा के, बाकी किसी का भी पद घोषित नहीं हुआ है। सारे पद खाली पड़े हैं, जो जितना भले लेट आए तो भी वो पद पा सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, पर जो पुराने हैं तो वो तो घिसे पिसे है ना, घिसे पिसे है। बहुत कुछ उन्होंने सहन किया है, बहुत समाया है, बहुत बातें उनके जीवन में आई होगी, इतना उन्होंने उसको चलाया है, फिर भी माया पर विजयी बने हैं, कितनी समस्याएं आने के बावजूद भी माया से हार नहीं खाई है, वो सच्चा सोना बन जाते हैं। तो उन सच्चे सोने को बाबा क्या वरदान देते हैं, ओल्ड इज गोल्ड बिकॉज इट कैन मोल्ड। सच्चा सोना है, पुरानी है, सच्चा सोना बन गए, इतने मजबूत है। जैसे कोई नरम चीज पड़ती है ना आग में तो क्या होती है, मजबूत बन जाती है। ईंट पड़ने से क्या होता है, हाँ, जितनी वो ईंट अग्नि में पड़े भट्ठे में पड़े उतना क्या होता है, मजबूत हो जाती है। गिराने पर भी वो टूटती नहीं है, इतनी मजबूत भी हो सकती है। तो कोई कितना भी हिलाए लेकिन हम हिलने वाले नहीं है, इतना मजबूत बनते हैं। तो इसीलिए ओल्ड गोल्ड बनते हैं। फिर और क्या है? आग में डालते हैं कोयला, काला काला कोयला, कोयला पड़ने से राख बन जाता है, पहले जलता आग बनता है एकदम लाल लाल, फिर वो राख बन जाता है, रंग रूप सब बदल जाता है। तो आत्मा के अंदर कितने विकार हैं, क्या नहीं भरे पड़े हैं, कितने ऐसे पुराने संस्कार है, वो सब खत्म हो जाए और मैं आत्मा इतनी शुद्ध होकर के निकलूं, एकदम बदल जाऊं, ये आप 3 दिन में लक्ष्य रखना। और फिर और आगे किचरा पूरा भस्म हो जाए, उड़ जाए, वेपर हो जाए, धुआं हो जाए, तो क्या करो उसके लिए, छोड़ो तो छूटो। कहते हैं लेट गो लेट गॉड, लेट गो छोड़ो तो छूटो, कुछ भी बात को पकड़ के नहीं रखो। एक पक्षी होता है ना, वो उड़ना चाहता है लेकिन अगर डाली को पकड़ के रखा है तो क्या होगा, उड़ थोड़ी सकेगा, फिर कहेगा मैं क्यों नहीं उड़ रहा हूं, मैं क्यों नहीं उड़ रहा हूं, दूसरे तो उड़ रहे हैं। अरे छोड़ो तो छूटो ना, छोड़ो तो छूटो। तो पंछी छोड़े तो छूटेगा, उड़ेगा, पर पकड़ के रखेगा तो उड़ेगा कैसे। कई बार हम मिसाल देते हैं कि पंछी भले कमजोर डाली पर बैठता है लेकिन उसको चिंता नहीं है कि कमजोर डाली है। वैसे कोई पकड़ेगा डाली को तो चिंता होती है ना, ये डाली कमजोर है, टूट न जाए, मैं गिर न जाऊं, पर पंछी को फिक्र नहीं है। क्यों फिक्र नहीं है, हाँ उसको पता है ना अगर टूट भी जाएगी डाली मैं तो उड़ जाऊंगा, ऊपर चला जाऊंगा, मनुष्य तो नीचे गिरेगा ना, तो मनुष्य को डर लगेगा पर पंछी को तो डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो पंछी धरती पर होगा तो बाबा मिसाल देते हैं कबूतर का, कबूतर जो होता है ना वो नीचे दाना चुगता है, तो दाना चुगता है अभी उसका वो दाने को ही देख रहा है, चुग रहा है धरती पर। और एक समझो बिल्ली आ गई तो बिल्ली से डर जाता है और आंखें बंद कर देता है, वो डर भूल जाता है कि मैं उड़ सकता हूं, क्योंकि डर गया वो तो खाने में ही बिजी था। तो इसीलिए माया भले कितना भी आए लेकिन बाबा मेरे साथ है, छोड़ो तो छूटो और उड़ो वतन में। तो आत्म पंछी बन करके उड़े, मैं तो पंछी हूं। तो बाबा 2 मिसाल देते हैं, आज भी बाबा की सारी मुरली चली अंतर्मुखता पर, अंतर्मुखी बनो, अंतर्मुखी बनो, बाहर से कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, अंतर्मुखी बनो। तो अंतर्मुखता का मिसाल हम किसका देते हैं, कछुए का। कछुआ कितना अंतर्मुखी होता है, उसको चलना है तो चलेगा, नहीं चलना है तो अंग समेट लेगा, अंग समेट करके बिल्कुल बैठ जाएगा। जितने भी जीव है ना इस संसार में, प्राणी जीव जो भी है, सबकी जो उम्र है वो चलो 100 साल मनुष्य की गाई जाती है, लेकिन सबसे जास्ती उम्र अगर किसी प्राणी की है वो कछुए की है। 500 साल तक भी जी सकता है वो, 500 साल क्यों जी सकता है, क्योंकि उसका जो मेटाबॉलिज्म है शरीर का वो बहुत स्लो है।
ओम शांति। आप सबको देखकर हमारी आदरणीय पुष्पा दीदी की बहुत याद आ रही है। एक तो याद आ रही है उनकी, और दूसरे आप सबको बधाइयां देना चाहता हूं विश्व शांति सरोवर की, जिसकी बड़ी तैयारी कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर लो। इस अवसर पर हमारे साथ हल्दर भाई हैं, इन्हीं बातों को सुरों में पिरो रहे हैं, उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें।
विश्व शांति सरोवर में सारे विश्व को नहलाना, विदर्भ के राजाओं को झकझोर के जगाना, इसके लिए ही शक्ति भरने बाबा बुलाए हैं, मधुबन भट्टी करने को लगन लगाए हैं, लगन लगाए हैं। नागपुर की बगिया के पुष्प आए हैं, पुष्प दीदी की भी संग में याद लाए हैं, साकार के संकल्पों को करना है साकार, मधुबन भट्टी करने की लगन लगाए हैं, लगन लगाए हैं।
लगन लगाए हैं।
पर तप करके बनना व्यक्त फरिश्ता, तपो भूमि पर तप करके बनना व्यक्त फरिश्ता, बादलों में वैसे भी दिखते हैं सभी फरिश्ता, वरदानों से भरने स्वर्णिम अवसर पाए हैं, मधुबन भट्टी करने की लगन लगाए हैं, नागपुर की बगिया के ये पुष्प आए हैं, पुष्प दीदी की भी संग में याद लाए हैं, मधुबन भट्टी करने की लगन लगाए हैं, मधुबन भट्टी करने की लगन लगाए हैं, मधुबन भट्टी करने की लगन लगाए हैं, लगन लगाए हैं।